দামোদর জিউ কি যে রায় দামোদর ব্রত কি যে প্রতপালনকারী ভক্তবৃন্দ কি যে জয় উর্জেশ্বরী মদেশ্বরী প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী ধারণী কি যে ব্রজদেবী গণ কি যে জয় সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি যে গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। বৃন্দাবন ধাম ব্রজবাসী অল সমস্ত ভক্তবৃন্দ গুরুপাদ পদ্ম এবং অল সমস্ত বৈষ্ণবকে চরণ কমলমে মেরা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম স্বীকার হো। আজ প্রপাতজিকে অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে তিরুভাব তিথি হ্যাঁ মহাপ্রভুকে প্রিয় সেবক কাশীশ্বর পণ্ডিত উনকা ভি তিরুভাব তিথি হর ভূগর্ভ গোস্বামী যে মহাপ্রভু নে সবসে পেলে ব্রজ মে ভেজা উনকা ভি আজ তিরুভাব তিথি হো। অভি হামলোক ভগবানকে প্রিয় পার্ষদ গুণগান কীর্তন শ্রবণ কীর্তন করলে সে ই ভগবানকে অত্যন্ত প্রসন্নতা কাই কারণ হোক ইয়ে সবই আচার্য জননে ব্যক্ত কিয়া প্রকাশ কিয়া। তবে আমার নজদিককে যে প্রভুপাদজিকে অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে কুশ গুণাবলী শ্রবণ কীর্তন করলে কি প্রয়াস করুঙ্গা কথে মহারাজি ব্রাহ্মণ কুলমে আবির্ভূত হুয়ে এসকে বাদ মহারাজি কলকাতা মে পোর্ট কমিশনার মে ও পোর্ট কমিশনার বনে আর শুরু সে মহারাজি কা ধার্মিক প্রবৃত্তি থি তো ভক্তিমন ঠাকুর উস সময় প্রচার কর রে থে উনকে সেবক থা ভক্তিরত্ন ঠাকুর ভক্তিরত্ন ঠাকুর প্রচার করতে থে আর সবকু কে দেখো কলিযুগ মে বেদ বেদান্ত শাস্ত্র উপনিষদ সবকু বিরাজমান হে কিন্তু উসকে অনুযায়ী বহুত কম মিলেঙ্গি কিউকি লোকের দিমাগ ইত্যা কমজোর হে অন্নগত প্রাণ যোনিগত মন অন্নকে বিনা রে নেই সকতা আর যদি অন্ন ভোজ গ্রহণ কিয়া তামসি ইয়া রাজসি ইয়া সাত্বিকি তো নির্গুণ তত্ত্বকে স্পর্শ নেই কর পায়ঙ্গি এসলি সবসে পেলে অন্নময়ম ব্রহ্ম বিজ্ঞানম ময় ব্রহ্ম আনন্দময় ব্রহ্ম তো ব্রহ্মকে উপাসনা করনা হে তো ঋষি মহর্ষিকে পদাঙ্ক অনুসরণ করনা পড়েগা ও লোক কবে সুখে পত্র চেবা লিয়ে কবে পেড়কা সুখে ছাল চেবা লিয়ে কবে সুখে ফল চেবা লিয়ে আর সারা দিন আপনার ধ্যানস্থ করে নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাসনা করতে থি তিয় কলিযুগ হে বিনা অন্নকে প্রাণী টিক নেই সকতা তো ইসলি অন্ন খায়েগা গ্রহণ করেগা তো উসকে মন ভি ভটকেগা ও লম্পট হুগা হ্যাঁ ও চিত আপনার ইন্দ্রিয় সংযম নেই কর সকতা অত কলিযুগকে জীবকে লিয়ে হ্যাঁ ভক্তিকে যে ন প্রকার অঙ্গ হ্যাঁ উসমে যদি কহ শ্রবণ করো তো উনকে রুচিকর নেই হলে সে শ্রবণ ভি নেই করেগা হ্যাঁ তো ক্যা করে ইসলি মহাপ্রভুজি নে কীর্তন ধর্ম কা প্রচার কিয়া হ্যাঁ কলিযুগ কেবল নাম আধারা তো ইয়ে যে নাম সংকীর্তন হ্যাঁ সব লোক মিল করকে যাব করতে তো উসকা সংকীর্তন কহতে অকেলা যদি কহতে নাম কা কীর্তন করতে তো উসকে দ্বারা কুছ कलि के हाथ से बच सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहते हैं कलि दोष निधि अस्ति जिको एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। कलियुग में दोष ही दोष है, गुण कुछ भी नहीं है, किंतु एक ही गुण है, क्या? कलि दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण, क्या महान गुण? कीर्तना देव कृष्णस्य, कृष्ण कीर्तन, और कीर्तन नहीं, और कीर्तन में इतना शक्ति संचारित नहीं है। कलियुग में कृष्ण कीर्तन करने पर उनके अंदर समस्त शक्ति संचारित होगा, प्रवेश करेगा, प्रकाशित होगा और निर्गुण तत्व के तरफ, निर्गुण ब्रह्म के तरफ बढ़ सकता है। नहीं तो सगुण उपासना करने जा कर के प्राकृत बद्ध जीवों की पूजा करने लग जाते हैं, सोचते हैं भगवान राम भी आए तो कृष्ण भी आए तो उनके जैसे मूर्ति की उपासना होती है, ध्यान होता है, स्मरण होता है, कीर्तन होता है, ऐसे प्राकृत बद्ध जीवों की भी गुणों के द्वारा आकर्षित होकर के उनका भी कीर्तन करने लग जाते हैं। ये महामाया का दुर्ग है, इसलिए पार नहीं पा सकती, किंतु जो कृष्ण कीर्तन करेंगे तो उनके लिए कहते हैं कि मुक्त संग परम व्रजित। यह मुक्त भगवत पार्षदों के परिकरों के साथ उनका संबंध होगा। तो भक्तिरत्न ठाकुर ओ प्रचार करते थे, तब वो सब जगह साधुओं के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, तो कहीं भी पहुंच जाते। तो एक दिन ये पोर्ट कमिश्नर से मिले, तो मिल करके उनसे कहा देखो कीर्तन करना सीखो, कीर्तन के कीर्तन प्रेमी बनो, भगवान को यदि प्रसन्न करना है उनके गुणों का, नामों का, रूपों का, लीला का कीर्तन करो। उनके शुरू से थोड़ा रुचि तो थी, जब भक्तिम ठाकुर जी शिष्य भक्तिरत्न ठाकुर मिले तब उनको निमंत्रण दिया। जब इतवार को छुट्टी होता है उस समय ब्रिटिश जमाना, तो हम लोग सब मिल करके नगर संकीर्तन करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे और जगह जगह पर हम लोग ये कीर्तन रस का वितरण करेंगे। तो धीरे धीरे करके वो लोग जब संकीर्तन करते तो मन में उत्साह और प्रबल जागृत हुआ कि सत्संग चाहिए, साधु चाहिए, साधु के निकट जाएंगे, मिलेंगे तो कुछ भगवत गुणगान श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य होगा, या उनके आशीर्वाद से हमारा चित्तवृत्ति शुद्ध होगा और माया को हम अतिक्रम कर सकते हैं। तो साधु कहाँ मिलेंगे, इसलिए वो लोग ढूंढते ढूंढते पूछते, तब गोरखेश्वर बाबाजी महाराज उस समय कुलिया नवद्वीप में गंगा किनारे वो भजन करते थे, उनके दर्शन के लिए आए। जब बाबाजी महाराज के दर्शन के लिए आए तो बाबाजी महाराज उनका निरंतर हरिनाम के अलावा, हरि कीर्तन के अलावा उनका कोई और कार्य नहीं था, इसलिए और नाम में मस्त थे। घंटों तक बैठे, बाबा जी महाराज को पता ही नहीं कोई है आया गया, कोई मतलब ही नहीं ये लोग, किंतु वहाँ आकर के परेशान नहीं, थके नहीं, तो उन अनुभव करने लगे ये स्थान में भी नाम के शक्ति के द्वारा किसके चित्त चंचल नहीं होता और कोई भटकते नहीं, एकाग्र चित्त अपने आप हो रहा है, अर्थात हमें यहाँ से हटने के भी मन नहीं कर रहा है, शांति प्राप्त हो रहा है, तो ज़रूर ये महापुरुष के पास में ऐश्वर्य शक्ति है। नहीं तो हम घंटों घंटों नहीं, कितने सुबह से संध्या तक हम इंतज़ार कर रहे हैं किंतु हमें थकान नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई इच्छा नहीं, हटने की भी इच्छा नहीं। तब जब बाबा जी महाराज शाम हो गया और गंगा जी के लिए चल दिए, वहाँ जाकर के गंगा जी का प्रणाम स्तुति आदि किया और महाप्रभु के लिए अपना प्रार्थना आदि की, तब देखा कुछ लोग बैठे हैं, अर्थात अंतर्दशा से जब अर्ध बाह्यदशा, बाह्यदशा में आते हैं साधक, तब प्राकृत जीवों के प्रति कल्याण के लिए उनको दर्शन देते हैं और कुछ श्रवण कीर्तन कराने की चेष्टा करते हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने पूछा, आप लोग सत्संग के लिए साधु से मिलने के लिए आए, तो आप लोग गंगा जी पार करके उस पार में वार्षवानवी द्वैतदास भक्ति सिद्धांत सरस्वती विराजमान हैं, उन विमला प्रसाद विराजमान है, वहाँ जाओ, आप लोग भगवत कथा श्रवण कीर्तन करो और उनके कृपा से भक्ति की कुछ अंग पालन करने की प्रवृत्ति प्राप्त करोगे। नहीं तो यदि साधु कृपा नहीं है, बिना हरि कृपा मिले न संता, यदि भगवत कृपा है तो साधु मिलेंगे, और साधु के कृपा हो तो क्या होगा, संत हृदय नवनीत समाना। साधु के हृदय मक्खन से बहुत ही कोमल है, वो किसी के दुख कष्ट को वो सहन नहीं कर सकते, उनको जब तक भगवान के चरणों में नहीं पहुँचाएंगे और तब तक उनको भी शांति नहीं, अर्थात वो भी चेष्टा युक्त होते रहते हैं। तो वो लोग जब प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए फिर आए, और प्रभुपाद जी का नियम था कोई भी व्यक्ति आए तो हरिकथा कीर्तन करना शुरू कर दिया, चाहे अकेले हो, चाहे 10 जन हो, चाहे 50 हो, चाहे लाख हो, और कीर्तन उनका हरिकथा बंद नहीं होती हैं। ये नहीं कि आधा घंटा एक घंटा में थक जाए बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। अनर्गल तस्मिन मन मुखरित मधुमेह चरित्र, भगवान की जो मधुमय गाथाएँ हैं, चरित्र हैं, वो कीर्तन करने में कौन ऐसे होगा कि थक जाए, परेशान हो जाए। पर कीर्त महाराज तो श्रवण करते करते थके नहीं और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करते करते थके नहीं। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर उन लोगों को भगवान के गुणगान और कथाएँ सुनाने लग गए। ये लोग कथा कीर्तन सुनने के बाद प्रभुपाद से आदेश लेकर के गए, किंतु अब संसार प्रति या नौकरी चाकरी अब अच्छा लगने नहीं लगा, और अब फीका लगने लगा। और क्या करते थे ये लोग, साप्ताहिक संकीर्तन निकालते या अनुष्ठान करते। अब ये प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवत कीर्तन करना शुरू की, क्योंकि भगवान ने कुछ समय निश्चित कर रखा है, जो ब्रह्म मुहूर्त अतिसंध्या है उसमें कीर्तन का कुछ प्रभाव और फल कुछ और ही है। इससे ब्रह्म मुहूर्त में वो लोग संकीर्तन करना शुरू की, उससे भगवान के नाम का कीर्तन, रूपों का, गुणों का, लीलाओं का कीर्तन करने लगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, फिर प्रभुपाद जी दर्शन के लिए आए। उस समय प्रभुपाद जी ने पूछा, भगवान को प्रसन्न करने की क्या उपाय है, आप लोगों ने क्या सोच लिया, क्या आप लोगों के अनुभव है। तो भक्तिरत्न ठाकुर और ये उस समय परमानंद ब्रह्मचारी, इन लोगों ने बोला, यदि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम भोनिधि, यदि प्रेम समुद्र में मज्जन करना है, अवगाहन करना है, तो कलियुग केवल नाम आधारा, तो कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, कृष्ण कीर्तन गान और नृत्य, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूछा, कोई आप लोग हमें कोई कीर्तन सुनाओ, हम ये देखना चाहते हैं ये कीर्तन कोई साधारण जगत के लोगों के हाँ मनमानी मनोकल्पना तो नहीं है, अच्छा है, कुछ नहीं करता है तो भगवान के लिए कुछ प्रार्थना करता है, किंतु ये कुछ हाँ रसाभास दोष युक्त होता है, हाँ कुछ तो प्राकृत कवियों का सजियाओं का अपना विचार उसके अंदर में मिस डाल देते हैं, क्योंकि बहुत प्राकृत सहजिया वो लोग सोचते हैं कि हमारा कीर्तन भगवान के लिए हैं है और भगवान सुनेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, किंतु ये कीर्तन का तात्पर्य यदि नहीं समझे हैं, जगत को रिझाने के लिए मनोरंजन के लिए यदि कोई कीर्तन होता है तो उसमें भगवान तक पहुंचने के पहले ही हैं वो समाप्त हो जाता है, दुनिया के साथ तक रह जाता है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा तो उस समय उन लोगों ने नरोत्तम ठाकुर जी के प्रार्थनामृत प्रेम भक्ति चंद्रिका और भक्ति ठाकुर जी के कल्याण कल्पतरु जामुन भावली शरणागति हाँ सिद्ध हाँ जो प्रणाली बहुत प्रकार के मुकुंदमाला स्तोत्र सब सुंदर सुंदर कीर्तन को प्रभुपाद जी के सामने परिवेशन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं महाजनो जनगतस्य पंथा तर्को प्रतिष्ठा सुतो विभिन्ना नासार विशेषस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो जनगतस्य पंथा। महाजन जिस चीज़ को स्वीकार किया ग्रहण किया और जिस मार्ग में चले वही शुद्ध मार्ग हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, नरोत्तम ठाकुर के पदावली भक्तिम ठाकुर जी के पदावली कीर्तन आप लोगों ने करना करने की प्रयास किया, इससे केवल नरोत्तम ठाकुर नहीं महाप्रभु प्रसन्न होंगे और आप लोगों को शक्ति संचार करेंगे और अपना लेंगे। इसका परिणाम हुआ कुछ समय के बाद प्रभुपाद जब कलकत्ता उल्टा डिंगी में और बाग बाजार में प्रभुपाद जी और प्रचारों में उधर जाते तो ये लोग जहाँ भी प्रभुपाद जी प्रोग्राम होता है सब सम्मिलित होते। कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी के कृपा से ये नौकरी रिजाइन दे करके आकर के मठवास करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन कहा कि आप लोग कुछ महाप्रभु की सेवा में अपने को समर्पण कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी के निकट मेरे द्वारा क्या सेवा हो सकता है, या आप जानते हैं और आदेश निर्देश दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोले आज से तुम ये मैगजीन और उसमें आर्टिकल जो लिखते हैं तो उसको प्रूफरीडिंग करना है और प्रेस में जाना है, छपवाना है, वितरण करना है और संपादकीय कार्य को संभालना है। तो बोले प्रभुपाद मुझे तो कुछ लिखना नहीं आता, कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके जैसे बच्चों के अ आ ई ऊ सिखाते हैं ऐसे प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से उनको लिखा श्री श्री गुरु गौरांग जयत। बोले अब तुम्हारा लेखनी बंद नहीं होगा कभी, बस लिखा दिया। तो महाराज कहते थे जब 102 साल की उम्र हो गया, बोलते हैं प्रभुपाद जी ने उस दिन हाथ पकड़ा और एक अक्षर लिखाया कि गुरु को गौरांग, गुरु के चरणों में सदा विराजमान रहना। तो गुरु के साथ संबंध युक्त होने से और जो उनके जो अंतरात्मा है और परमात्मा के जो नाम रूप गुण लीला समूह है उसका स्रोत में कभी बंद नहीं होगा। तो उस दिन से और संपादकीय कार्य करने लगे, उनका लेखनी देखने से पता पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले गंगा जी की महिमा, तुलसी की महिमा और वैष्णव की महिमा, भक्तों की महिमा उन्होंने लिखना शुरू की और प्रचार करना और वितरण करना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे जब 102 साल भी उम्र हो गया तो अंतिम दिन तक भी उनका लेखनी भी बंद नहीं हुआ, कीर्तन बंद नहीं हुआ, प्रचार भी बंद नहीं हुआ। एक दिन वर्धमान के राजा, उनका अंबिका वन, उसमें उन्होंने 108 शिव मंदिर बनाया और वो शिव जी के उपासक थे। उनके पत्नी वो कृष्ण के उपासक थे। अब दोनों में आपस में कोई लड़ाई दंगा नहीं था और परम शांति था। तो रानी गंगा नहाने जाती और राजा कहते यदि तुम गंगा जी नहाती हो और जाती हो और ये गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, मैं शिव जी के पास जाऊंगा और गंगा जी के दर्शन करूंगा, मैं अलग रूप से नहीं जाऊंगा कहीं। रानी कभी कभी कहती चलो आज गंगा जी स्नान करने जाए, बोले मैं जानता हूँ शिव ठाकुर के मस्तक पर गंगा जी अवतीर्ण हुए, सदा विराजमान है। तो उनका 108 मंदिर सर्कल से बना हुआ है, तो रानी गई गंगा जी, बहुत अनुरोध किया, राजा कभी गए नहीं। राजा शिव जी के चरणों में बैठ करके उनका ध्यान करते, उपासना करते, उनका पूजा करते, उनका गुणगान कीर्तन श्रवन करते। गंगा जी चल चल करके वो शिव जी के जहाँ शिव मंदिर चारों तरफ से मंदिर है, बीच बीच में आके वो प्रकट हो गई। तो राजा कहते रानी को देखो कैसे गंगा जी प्रकट हुई आई। रानी कहती है हमारे भगवान के चरणों के धवन है गंगा जी। और राजा कहते हैं ठीक है गंगा जी, किंतु गंगा जी भगवान कृष्ण के पास तो विराजमान नहीं है, उनके चरणों से निकल करके शिव जी के मस्तक पुकार आकर के सदा के लिए विराजमान हो गए। और वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा दे दिया, छोड़ दिया, तो पृथ्वी को पवित्र करती हुई गंगा जी गंगा सागर तक पहुँचती है। तो किंतु जहाँ शिव ठाकुर विराजमान है वहाँ गंगा जी उनसे कभी अलग नहीं होते। तो महाराज जी को कालक्रम से वर्धमान के राजा ने भगवान कृष्ण का मंदिर और शिव जी का मंदिर की सेवा महाराज जी को प्रदान कर दी। महाराज जी भजनशील थे, वो कीर्तन करते, किंतु कभी प्रयास नहीं किया कि भोजन आच्छादन की। अब जन्माष्टमी आया, नंदोत्सव के दिन सारे अंबिका भवन, अंबिका कालना आजकल बोलते हैं, तो अंबिका भवन बहुत बड़ा गंगा किनारे शहर है, सभी लोग आज नंदोत्सव में निमंत्रित होकर के आए। तो सेवक पूछते हैं गुरुजी इतना लोग निमंत्रित है, सब आ रहे हैं, कोई प्रसाद नहीं, भोजन नहीं, कोई तैयारी नहीं, ये लोग क्या परिवेशन करेंगे, इनको क्या देंगे? तो कहते नंदोत्सव है, नंद बाबा सब तैयारी कर रहे होंगे, तुम्हें चिंता किस बात का, कृष्ण का जन्मोत्सव नंद बाबा मनाते हैं और ज़रूर कुछ कर रहे होंगे। तो बोले इतना लोग आ रहे हैं, 10 बज गया, 11 बज गया, कोई तैयारी नहीं, भोगराग नहीं। बोले तुम चिंता मत करो, हमारा कर्तव्य है उनका नाम संकीर्तन करना, उनके रूप गुण लीला का सब मन कीर्तन करना, उससे बड़ा रस कुछ नहीं है, उससे बड़ा आत्मा का भोजन कुछ नहीं है। किंतु सेवक प्राकृत नज़रों से गुरु को बार बार उलाना देने लग गए, इतना लोग आए, मान सम्मान की बात है, लोग क्या कहेंगे। जब 12:30 बज गया, भोगों के आरती का समय हो गया तो वो तो अपने नाम स्मरण में बैठे हुए हैं, उठे नहीं। लोग आके चारों तरफ हल्ला करने लग गए। इतने में क्या दिखा, 1:30 बज गया, कितने गाड़ियों से भर भर करके छकड़ों में गाड़ियों में, उस समय तो बैलगाड़ी चलता घोड़े का तांगा, तो कितनी मिठाई पूड़ी पकवान और कितना प्रसाद आया, जो कि पुजारी नहीं वो उतारते उतारते थक गए। कितने मिठाई है, कितने लाड्डू, कितने पूड़ी पकवान, क्या क्या आया है। तो बोले महाराज जी तो अपने भजन में हैं, पुजारी सेवकों ने भोगरा के लगा दी। गुरु जी को बुलाया कि अब भोग हो गया, अब आरती दर्शन करो और हम प्रसाद का परिवेशन करेंगे। तो महाराज जी बोलते हैं तुम्हारा प्रसाद कहाँ से आया। बोले गुरु जी हमें पता तो है नहीं। बोले तुमने पूछा नहीं, एक बार तो पूछना चाहिए था। भगवान तो कहते हैं कि जो क्षम भाव में हम, तो भगवान खुद ही तो जोगों को क्षम को बहन करने वाले हैं। तो तुमने, तुम्हारे पास प्रभु सब कुछ लेके आए और प्रभु का तुमने कुछ आदर सत्कार किया नहीं। हाँ भगवत परिकर सब आए थे, तुमने उनका दर्शन किया नहीं और उनको पूछा नहीं, आसन दिया नहीं, तुमने कुछ पानी के लिए भी पूछा कि नहीं। तुम तो प्राकृतिक लोगों को खिलाने के लिए मस्त हो, व्यस्त हो, तुम्हारा नाम मिले, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, पूजा मिलेगा, किंतु जो स्वयं प्रभु आए हैं, हाँ नंद भवन से नंद बाबा चल के आए हैं, तुमको उनका आदर नहीं किया। अब सेवक सोचने लग गए, मैं तो किस रंग में रंग गया, किस में मैं पागल हो गया, मैं ध्यान भी नहीं दिया, सामान आया उतार लिया, पत्तल भी आया, नींबू आया, नमक आया, चीनी कोई मिर्ची कोई चीज़ छूटे नहीं। तो महाराज जी बोले कि आज नंद भवन में कितना बड़ा उत्सव हो रहा है, हाँ देखा यहाँ पर बहुत भक्त लोग आएंगे, तो भगवान खुद वहाँ से सब कुछ उठा करके परिकर के साथ तुम्हारे पास तक पहुँचाया। किंतु बद्ध जीव का अकल तो है नहीं, हाँ वो तो अपना मोहिनी मूरत और श्यामली सूरत, उससे उनका आकर्षण नहीं है। हाँ गुरु जी ने उस दिन बहुत, महाराज जी ने बहुत उनको समझाया कि ऐसा अकलमंद नहीं होना चाहिए। फिर उत्सव हुआ, लोगों ने बहुत चौबीस ले जा पिय चतुर्विध अन्न खूब प्रसाद पाया है, और भगवत गुणगान करते करते थके नहीं, सारा दिन उत्सव चला घटे नहीं। जब शाम हो गया, रात हो गया, महाराज जी भजन से उठे, बोले देखो महाप्रसाद सब लोगों ने पाया, कुछ झूठन छोड़ दिया कि नहीं पत्तलों में, हैं क्योंकि वैष्णव को उच्छिष्ट हैं ताहे मोर मनोभीष्ट, हैं वैष्णव को उच्छिष्ट कुछ रखा। तो गुरुजी आप प्रसाद पाए नहीं, हम लोगों ने किसी ने प्रसाद पाया नहीं, हमने सब अतिथियों को भक्तों को तो खिलाया। तो महाराज जी कहते देखो कुछ यदि उच्छिष्ट है तो थोड़ा सा किनका मुझे भी दो। तो तब तक साधारण लोगों ने प्रसाद तो पाया, अब सेवकों का इतना भी ज्ञान नहीं है कि गुरुजी के लिए पहले थोड़ा प्रसाद रख दे उठाए, किंतु वो लोग प्रतिष्ठा और पूजा के पुजारी हैं, वो तो गुरु के पुजारी भगवान के पुजारी नहीं हैं। इससे गुरुजी ने समझाया सर्वेशम गुरुवे दद्यात्, जो कुछ है गुरु के निकट समर्पण करो, गुरु भगवान को समर्पण करेंगे। हम लोग भगवान को जानते नहीं, किंतु गुरु का प्रीति भगवान में है, इससे गुरुत्व दायित्व उनका है, जिम्मेदारी है। फिर शाम को सभा उपस्थित हुआ, बहुत भक्त लोग आए, कथा कीर्तन चलने लगा। महाराज जी को प्रभुपाद जी ने वो कीर्तन करने के लिए आदेश दिया था, जब से प्रभुपाद जी की जब भी विराजमान होते तो महाराज जी उनको सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाते। यहाँ तक कि अंतिम दिन प्रभुपाद जी व्रज यात्रा करेंगे, तभी सुबह सुबह बोला मैं कीर्तन सुनना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा। तो कोई और कीर्तनिया को बुलाया, औरों को बुलाया, बहुत शिष्य सेवक थे, फिर बोले नहीं ये प्रणवानंद को बुलाओ, पूरी महाराज जी को बुलाओ, वो कीर्तन सुनाएंगे मुझे और फिर मैं जाऊँगा। तो प्रभुपाद जी सुबह सुबह तो चले गए थे, इसके बाद ये भजन करने के लिए जब वर्धमान के अंबिकावन में अनंत वासुदेव मंदिर में आकर के विराजमान रहे, तो उनके यह चमत्कारों को देख करके लोग हैरान हो गए। लोग कहते हैं कि अभी तक तो एक बूंद पानी भी नहीं था, अभी तो पूरा भंडार उपस्थित हो गया। तो उनका जय जयकार करने, गुणगान करने लगे, क्योंकि उनको तो चाहिए भोजन, तो उन्होंने भोजन किया, खुश हो गए, तृप्त हो गए। किंतु महाराज जी के जो कृपा प्रसाद है उसको तो ग्रहण किया नहीं, समझे नहीं। तो कहते भगवान यदि कृपा करना चाहते हैं तो भगवान स्वयं अंतर्यामी परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, और बाहर में दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, महंत गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और ऐसे पांच प्रकार से भगवान स्वयं ही अपना शक्ति का संचार करते हैं और उसके द्वारा ही जगत का कल्याण करते हैं। किंतु यह हुआ, प्रसाद पाया, कथा कीर्तन सुनने की रुचि हो गया। अब महाराज ने शाम को नंदनंदन की महिमा, जसदानंदन की महिमा, अभरनंदन की महिमाओं का गुणगान कीर्तन किया। अब सब लोग जब उनके महिमा सुना तब कहते हैं सचमुच में ये नंदोत्सव है, अब हम लोगों के हृदय में रस का संचार हुआ है। तो साधु के निकट आया केवल भोजन पान करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, अनुभव भी नहीं होगा, बाद में कल्याण होगा ये निश्चित है। क्योंकि गीताजी में भगवान ने कहा यदि कल्याण चाहते हो तो सुनो, अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रसादे सर्वदुखानाम हानिरस्य पूजायते प्रसन्न चित्तस्य ज्ञासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि ठिकाने लग जाएंगे और सब दुख दूर जाएगा, कल्याण के परम कल्याण उपस्थित होगा यदि महाप्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद कृपा प्रसाद ग्रहण किया। तो प्रसाद केवल मात्र उनका उच्छिष्ट नहीं, अधरामृत ये नहीं, उनका आदेश, उपदेश, निर्देश वो भी इतना ही नहीं, यदि परमात्मा के गुणगान कीर्तन करते, वितरण करते हैं, उनके जो भागीदार होते हैं वो सब अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज जी ने हरिकथा शुरू कर देते तो कैसे कीर्तन करते, आँख बंद कर लिया और घंटों तक कीर्तन, हरिकथा कीर्तन कर रहे हैं। तो कभी कभी देखा जाता सेवक लोग कहते गुरुजी बहुत रात हो गया तो तुम लोग सो जाओ, तो गुरुजी कोई नहीं है यहाँ, सब चले गए, आप अकेले कीर्तन कर रहे हैं। बोले हमारा कथा कोई सुने न सुने हमें इससे चिंता नहीं है, हम तो प्रभु के गुणगान कर रहे हैं, प्रभु हमारा सुन रहे हैं, हम प्रभु को सुना रहे हैं, हम तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करते। कितनी अनंत जीवात्माएं विराजमान हैं, जिनका रुचि होगा वो आके कथा सुनेंगे, और जिनका रुचि नहीं है उनको बांध करके कोई रख नहीं सकता। अब क्या हुआ, महाराज तो रहते थे गंगा किनारे जंगलों में, अनंत वासुदेव मंदिर अंबिकावन में। अब एक दिन देखा महाराज जी हरिकथा बोल रहे हैं, बहुत सारे साधु लोग कीर्तन करते हुए आए, कोई जटाजूट वाले, कोई चिमटे वाले, कोई चिलम वाले कितने सारे हैं कहते नेड़ा नेड़ी छड़ा छड़ी आखड़ा बिंदे करछे बास यो तो एक कलि चला करछे जीवे सर्वनाश। तो कितने नेड़ा नेड़ी कितना जोगी भोगी सबरे आए महाराज बार आकर के बोले महाराज हम लोग बड़े भूखे हैं, आपके तो आश्रम के आप महंत हैं तो हम लोग को भोजन कराओ। तो महाराज जी बोले देखो भोजन करना है तो हमारे जो मालिकानी है राधा ठाकुरानी अन्नपूर्णा हाँ जगत माता वो सबका भोजन कराने वाली और सबको रस से पूर्ण करने वाले हैं। तुम लोग आए हैं थोड़ा कीर्तन करो, देखो तुम्हारा भोजन भी अभी तैयार हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगा। तो बोले महाराज ताकत नहीं है, बहुत भूखे हैं, अभी कब जब खिलाओगे, भूखे भजन नहीं है गोपाला, ले ले तेरा कंटियर माला, हमारा भूखे भूख के मारे मरे जा रहे हैं, अब भोजन कराओ तब कब कीर्तन करेंगे। तो महाराज जी बोले अच्छा ठीक है, अभी आप लोग बैठो मैं भोजन कराता हूँ। महाराज जी ने एक करताल ले ली और कीर्तन शुरू कर दी। बोलो भाई महाराज जी भूख लगी है, हम मरे जा रहे हैं, कितना दूर से आए हैं। महाराज जी कीर्तन शुरू की, थोड़ी देर में महाराज जी भी नाचने लगे, ये भी नाचने लग गए। महाराज जी ने रात भर लोगों को नाचा दिया और कीर्तन करते रहे। सुबह महाराज गंगा स्नान करने गए, सब गंगा स्नान करने गए, पास में गंगा जी हैं, स्नान करके आए। महाराज जी ने बोला अब भगवान का मंगल आरती होगा, बाल भोग होगा, आप लोग भोजन करना। बोले महाराज जी कल रात को आपने क्या जादू कर दिया, क्या तंत्र मंत्र कर दिया, हमें तो भूख भी मिट गया, थकान भी मिट गया, बड़े शांति मिली महाराज जी। तब महाराज जी बोला हमारे गुरु जी ने यही बतलाया कलयुग में कीर्तन में रस है और वही आत्मा को संतुष्ट कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो महाराज आपने हमें बहुत प्रसन्न किया, खुशी किया, हाँ अब हम आपको छोड़ के भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। महाराज बोले कोई बात नहीं है। क्या देखा कुछ समय के बाद वो लोग धीरे 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 करके आते जाते सब महाराज जी के निकट आश्रित हो गया, हाँ कितना सेवक हो गया। किंतु महाराज जी सबको सेवा का जिम्मेदारी देके एक स्थान से दूसरे स्थान तीसरे स्थान ऐसे हाँ आगे आगे बढ़ने लग गए। एक दिन महाराज जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं, आधी रात को उठ करके बहुत चिल्लाने लग गए, जल गया जल गया जल गया, आग लग गई, ओ बहुत गर्मी लग रहा है, आग को बुझाओ जल्दी करो शांति करो हैं। तो सेवक लोग बोले महाराज जी कोई आग तो है नहीं। बोले नहीं मैं देख रहा हूँ मेरा सारा शरीर जल रहा है, तुम लोग खबर लो। तो कलकत्ता के पास महाराज जी के आश्रम बना, अंबिकालना में जो अनंत वासुदेव मंदिर, सब जगह सेवकों ने खबर करा। तो देखा पुजारी रात को जो शयन आरती करते हैं, शयन आरती करके और घी की बाती रख के चला आया और पर्दे में आग लग गई और घर में ठाकुर जी के सब जल गया और बड़ा ऐसे अवस्था हुए कि मंदिर के कुछ भी बचा नहीं। तब महाराज जी आए भगवान के पास प्रार्थना की कि अनधिकारियों को सेवा का अधिकार देने से बद्ध जीव भोगी जीव कितना दुर्दशा उपस्थित कर दी। महाराज जी अनशन किया, उपवास केवल नहीं, दिन रात रोते प्रार्थना करते रहे प्रभु के पास, और कितना मुश्किल से महाराज जी ने फिर परिस्थिति को संभाला। तो कहते हैं ऐसे ही बद्ध जीव हैं गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, किंतु कुछ करना चाहता है, किंतु नियम श्रृंखला कुछ मानते नहीं हैं, तो वो दुर्दशा क्या होता है? और शिष्यों का सारा कुकर्म पाप जो कुछ करता है वो जाकर के वो गुरु तक पहुंच जाता है, हैं। तो बड़ा कठिन काम है। जब से महाराज जी बड़े सतर्क हुए, बोले ऐसे को न तो स्वीकार करना है, आलसी भोगी जीव हैं, उनको पद दे दिया, कुछ सेवा अधिकार दे दिया, बस वो तो अब पूज्य बन गया। तब महाराज जी फिर वहाँ पर बहुत दिन तक रह करके अपने हाथ से, यहाँ तक कि जब तक महाराज जी की अंतिम स्थिति थी, यात्रा करने का भी समय हुआ, तब भी महाराज जी स्वयं अपने हाथ से अर्चन करते। हमारे यहाँ जब रूप सनातन में विग्रह की प्रतिष्ठा होने जा रहा है, कहीं भी विग्रह प्रतिष्ठा होता है तो महाराज जी को बुलाते, तो महाराज जी विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं एक दिन दो दिन तीन दिन, क्योंकि मंदिर प्रतिष्ठा वास्तु प्रतिष्ठा, फिर बाद में देव देवताओं का आगमन के लिए उनको बुलाना, उनका सुरक्षा के लिए उनको स्थान देना, एक दिन लगता है, बहुत समय लगता है। और सुबह से लेके दो बज गया, तीन बज गया, बड़े बड़े महाराज बड़े बड़े संत सब आए। अब जब तक विग्रह प्रतिष्ठा नहीं हुए, भोगराग नहीं हुए, तो प्रसाद कैसे परिवेशन होगा, कैसे देंगे? तो महाराज जी को अनुरोध करने लग गए। उस समय महाराज जी करीब, जब रूप सनातन प्रतिष्ठा हुई उस समय करीब 95-96 साल के थे। तो महाराज जी तो धीरे धीरे कर रहे हैं, और इधर वृंदावन में सातों देवालय के सब महंत गोसाई कितने कितने लोग आए, अब सब छटपट कर रहे हैं, हमें बुलाए क्यों, इतना हम इंतज़ार नहीं कर सकते, शाम होते जा रहे हैं। तो महाराज जी बोले, भाई एक बात सुनो, कन्हैया अभी गोचारण में गए हैं, सुबह का गया, अभी तक आए नहीं, अब जसोदा माता इंतज़ार कर रही है, सब तैयार है, लाला को तो आने दो, तब तो नंद बाबा आएंगे, दोनों को खिलाएंगे, सखा लोग बैठेंगे, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी राजर्षि सबको प्रसाद मिलेगा। जसोदा माता नंद बाबा पहले ऋषि महर्षि को देखे, तब अपने हाथ से लाला को खिलाते हैं, अभी तो आए नहीं। तो अब महाराज जी भाव और विचारों को कौन सोचे समझे? तो महाराज जी ने कहा, कलयुगी बद्ध जीव अन्नगत प्राण ये तो रह नहीं सकते महाराज, बोले चिंता मत करो, अभी लाला आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं, बस महाराज जी के बोलना था, और महाराज जी ने स्वयं ही कीर्तन शुरू कर दी। बस कीर्तन शुरू कर दी, जितने लोग आए थे रूप सनातन में, हम लोगों ने आंखों से तो देखा, कितने लोग, और बड़े बड़े नामी ध्यानी गुणी ज्ञानी पता नहीं कैसे कैसे, सब महाराज जी कीर्तन सुन करके ऐसे सुंदर कंठस्वर, कहाँ ऐसा उद्यम करने लगा था, कहाँ रोने बैठ गए, इतना करुण रस प्रवाहित कर दी कि कृष्ण गए गोचारण में, अवधार जसोदा माता का हृदय शुष्क हो गया लाला के बिना, और गोपियाँ कीर्तन कर रही है, रो रही है, उनके भावों का ऐसे उन्होंने स्पष्टीकरण कर दी, अब भूख प्यास कहाँ गया, शाम हो गया, आरती का समय हुआ, तब आरती आरती करके तब भोजन परिवेशन हुआ, प्रसाद दिया। तो उनका जो नित्य अष्टजाम अष्टकालीन लीला है, अष्टजाम साधन है, वो लोग उसमें प्रतिष्ठित है, इसलिए वो देखते हैं कब गोचारण में जा रहे हैं, और वहाँ वन में क्या हो रहा है, और फिर कब लौट के आएंगे, हैं वो लोग नित्य सेवा में नित्यकाल में विराजमान है। हाँ, तो प्राकृत बद्ध जीवों के लिए विधि मार्ग हैं, और उनके लिए राग मार्ग हैं, अनुरागमयी रागात्मिक ब्रजवासी जनों के साथ संबंध है। तो ये जो नित्य प्रभु के सेवक इस जगत में केवल आते हैं अपने अनुराग को परिवेशन करने के लिए, हाँ, जड़ अनुराग को मिटा करके भगवत अनुरागी और भगवत अनुराग दे करके उनको भगवान के सेवा में नियुक्त करने के लिए। इसके लिए महाराज जी सबको अनुरोध करते, आप लोग कीर्तन करना सीखो, प्रार्थना करो, कीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज जी अपने महाराज जी के साथ में इतना नज़दीक के संबंध थे, महाराज जी उनका सेवा करते, उनके साथ कभी कभी गंगा जी जाते स्नान करने, हाँ, क्योंकि महाराज जी का नियम था कभी ऐसे बाथरूम में जाके स्नान करना हमने तो कभी सुना भी नहीं। कोई गंगा जी है तो गंगा जी, नहीं तो समुद्र में, नहीं तो यहाँ आते तो कभी कुंडों में, यमुना जी में स्नान करना। तो एक दिन अपने महाराज जी के साथ स्नान करने गए तो गंगा जी नवद्वीप में, तो महाराज जी स्नान कर रहे हैं तो बहुत देर तक गंगा जी के पानी में बैठे बैठे स्तव स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। तो महाराज जी बोल रहे हैं अभी तो बहुत देर हो गया, मंदिर चलना है। महाराज कहते गंगा जी की इच्छा है आज यहाँ गंगा के किनारे ही आज यहीं रहे वास करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ संकीर्तन में निकले हैं, तो आज नगर भ्रमण हो रहा है करके महाप्रभु जी यहाँ अभी आएंगे थोड़ी देर में, यहाँ ही आज संकीर्तन उत्सव होगा, महोत्सव होगा। तो महाराज जी कहते हैं कोई तो है नहीं, और महाप्रभु के 500 साल हो गया, अभी महाप्रभु थोड़ी ना आएंगे, किंतु वो तो नित्य लीला का दर्शन कर रहे हैं, नित्य धाम हैं। कहते हैं अद्यापि और से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। वो नवद्वीप धाम महाप्रभु का है, महाप्रभु का संकीर्तन सदा चलता रहता है। कहते भाग्यवान व्यक्ति अपना दर्शन कर सकता है, नहीं तो दुर्भाग्य लोग वंचित है। तो महाराज जी ने कहा महाराज जी अब मंदिर चलो, कहते आप लोग सब जाओ, मैं यहाँ बैठूँगा, महाप्रभु आएंगे, नित्यानंद आएंगे और संकीर्तन करेंगे। वहाँ गंगा जी के पास में हमारा आश्रम का समाधि मंदिर है, वहाँ सब संतों का वहाँ समाधि होता है। तो महाराज जी किसी तरह से लौट के नहीं आए, शाम हो गया, रात हो गया, वहाँ ही बैठे हैं। तो साधन लोग क्या समझेंगे महाराज जी वहाँ बैठे, और रात भी बीत गया, फिर सुबह महाराज जी धीरे धीरे करके मंदिर आए। कहते आज ऐसे कीर्तन उत्सव चला और ऐसे रस कभी किसी को मिल नहीं सकता। तो संतों का जो ध्यान है और उनका जो अनुभव है, ये प्राकृतिक जगत के जो जीव क्या समझेंगे। ऐसे कोई तो कहेंगे ये पागलपन है, कोई कहेंगे मनमानी है, किंतु वो लोग साक्षात्कार करा के तब समाप्त करते हैं, छोड़ते हैं, नहीं तो छोड़ते नहीं। फिर महाराज जी उनसे अनुरोध किया कि महाराज जी आप तो काल रात भर दिन भर महाप्रभु के साथ मिले, संकीर्तन किया, तो हमारा ऐसा सौभाग्य हो कभी होगा? तो बोले क्यों नहीं, जब गौर पूर्णिमा आया महाराज जी सारा दिन उपवास, सारा दिन कीर्तन चलता है उस दिन। जब शाम हो गया, अभिषेक हो रहा है महाप्रभु जी की, बस उस कीर्तन में महाप्रभु महाराज जी ऐसे अनुभूति प्राप्त किया कि देखा महाप्रभु जी के परिकार लेकर महाप्रभु जी आविर्भूत हो गए और दर्शन दिया, संकीर्तन चल रहा है, उसमें प्रभुपाद जी के सब परिकारों को दर्शन किया। तब बोला यही गुरु का संतों का कृपा है, आशीर्वाद है, किंतु उनसे प्रार्थना तो करे, विश्वास तो रखे, संध्यात्मा विनश्यति हैं, किंतु अंधविश्वास भी नहीं। संध्या करने से विनाश अवश्य होगा, महाभागवतों के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी बोले हम लोग को बाद में, देखो हमारे अंदर में इतना अनुभव नहीं था, किंतु महाराज जी ने मुझे साक्षात्कार करा दिया, अनुभव करा दिया। हमारे जितना भी गोड़ी मठ का श्री मंदिर होता तो महाराज जी सब जगह जाते, सब जगह का ही अनुष्ठान करते। एक बार मायापुर में भक्ति कुमार मधुसूदन महाराज जी के मंदिर में विग्रह की अभिषेक और प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, वही 3 बज गया, सब लोग हल्ला मचा रहे हैं, निमंत्रण दिया प्रसाद नहीं कुछ नहीं हैं, बाद में बुलाते। तो महाराज जी ने बोला अच्छा ठीक है भाई, एक काम करो, भोग उठा करके ठाकुर जी के लिए सजा के रख दो और आप लोग भोजन करके चले जाओ हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भोग उठा करके रख दे और प्रसाद पाके चले जाए। वो लोग बोले महाराज जल्दी करो, बोले मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ हैं, इतने ग्वाल बाल है भगवान के साथ हैं, और इतने गाय है बछड़े हैं, प्रभु उनको चरा रहे हैं, उनको पहले भोजन करा रहे हैं और वो लोग विश्राम करेंगे तब प्रभु प्रसन्न होंगे भोजन पान के बाद, और पहले ही हम खा ले पी ले झूठन बच जाए तो भिखारी को दे दे या भगवान को दे दे, ऐसा तो होता नहीं। पहले प्रभु का मनोरथ को देखो, सुबह से निकले हैं गायों को लेके, उनको घास खिला रहे हैं, चरा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हैं और कितने और भी दुखी हैं, दरिद्र हैं, अनाथ है और जिनका कोई सहारा नहीं है, प्रभु सबका भोजन कराते हैं। तो जब प्रभु संतुष्ट होंगे तब सबको प्रसन्न करके तब प्रभु प्रसन्न होंगे, तब प्रभु अपने आप आएंगे भोजन करेंगे। तो आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग लेके खा पी लो, किंतु हिम्मत किसी की नहीं हुई। बाद में जब 4:30 बज गया वहाँ पे यही स्थिति हुई हैं, बस भोग राग हुआ, आरती हो गया, तब प्रसाद हुआ। तो महाराज जी लोग सबसे नित्य लीला में लीन हैं, हैं वहाँ उनके जो सेवा है, संबंध है हैं, वो समझना बड़ा कठिन है। इससे महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि है, वहाँ गोपीनाथ गौड़ीय मठ में महाराज जी के वहाँ पर पुष्पांजलि वगैरह होगा, निमंत्रण दिया है, जिसको जाना है हाँ जा सकते हैं, और वहाँ भी हरिकथा परिवेशन होगा, श्रवन कर सकते हैं। मैं आज यहाँ तक रखता हूँ, शाम को हम लोग फिर सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।